கண் உண்ணி கிடைத்து सत्र दो के मध्य में बात कर रहे थे, आखिर ये रावण कौन है, कोई है या नहीं है। हवा है क्या, कोई आत्मा है क्या, राम आत्मा है या हवा है।
आत्मा
राम आत्मा है तो रावण क्या होगा।
आत्मा ही
राम रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। बेसिक नॉलेज में क्या बताया गया, कि हमारी आत्मा में जो पांच विकार की कमजोरियां हैं वो रावण है। अच्छा, हर आत्मा में वो पांच विकारों रूपी कमजोरियां नंबरवार है या एक जैसी है।
नंबरवार
आप कमजोर कमजोर होती जाते नंबरवार कमजोरियां है। तो कोई आत्मा 100% काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली भी होगी, नहीं। और कोई आत्मा नंबरवार परसेंटेज में होगी, होगी या नहीं होगी। होगी। तो पूछा आखिर ये कौन है। आखिरीन कोई तो ऐसी आत्मा होगी दुनिया में जो काम विकार में 100% हो, नहीं तो क्यों गायन है। शंकर जी ने क्या किया,
कामदेव
को भस्म किया। अब भक्ति मार्ग में तो उसे देवता बताई दिए। अब देवता में तो विकार होते ही नहीं है। जरूर देवता बनने से पहले कोई दुनिया का सबसे बड़ा महाकामी होगा, जिसके अंदर जो देह अभिमान में काम विकार की अनुभूति भरी हुई है उसको भस्म किया होगा। ऐसे क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह और अहंकार भी होगा। नंबर वार तो जरूर होते। अगर दुनिया के धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जितना काम विकार है और काम विकार के आधार पर जितना व्यभिचार है उतना और दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन, कोई तो होगा। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक आरंभ करने वाला कोई तो होगा। कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, क्योंकि और धर्मों की जो हिस्ट्री का सबको पता है, बहुतों को पता है, कम से कम इस्लामियों को तो पता है कि आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उसके पहले और कोई भी दूसरा विधर्मी नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था। हिस्ट्री इस बात को बताती है, एक धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही राजा होता था, एक प्रकार की धारणाएं थी। इसलिए धैर्यवर्ष की जो पहले की हिस्ट्री है, सुख शांति की दुनिया थी, जो अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में क्रैश से 2000 साल पहले पैराडाइज था, ऐसे तो इस्लामी भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में भी है जन्नत का जिक्र। जन्नत थी लेकिन कहां थी ये कुछ नहीं बताया, और भारत में तो प्रसिद्ध है कि भगवान ने महावाणी महाभारत युद्ध कराया 5000 साल पहले, और महाभारत युद्ध के बाद तो शांति होती है ना, युद्ध से पहले शीत युद्ध होता है, जगह चलता है अंदर अंदर, एक दूसरे की काट करती है, तो ये साबित होता है जो दुनिया की खुदाइयां हुई है उनमें भी यह साबित होता है कि 2500 साल 3000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं मिली। इस बात को बताते हैं लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दूसरी बात कह दी कि डायनासोर मिले, उनकी हड्डियां मिल रही हैं कैलकुलेशन में लाखों वर्ष पुरानी। अब वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या शास्त्रों की बात पर विश्वास किया जाए या भगवान स्वयं आकर के बताए हिस्ट्री जागरा की सृष्टि की, उस बात पर विश्वास किया जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो डार्विन थ्योरी भी निकाली, सभी ने माना कि हाँ डार्विन थ्योरी सही है, मनुष्य पहले बंदर मिसल था, धीरे धीरे उसकी पूछ खत्म हो गई और वो मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद में वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को झूठ साबित कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मनुष्य है ना, मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है, विकारी बुद्धि के वशीभूत होकर के वो गलत कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। भगवान इस शक्ति पर आकाई है विकारी दुनिया को खलास करके निर्विकारी देवताओं की दुनिया बना दी, और धर्म पिताएं आते हैं 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम बुद्ध क्रांति गुरु नानक वगैरह, वो अपना धर्म तो स्थापन करके जाते हैं, धारणाएं तो स्थापन कर देते हैं लेकिन पुराने पद का विनाश नहीं करते, पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं करते, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर कुठाराघात नहीं कर पाते। भगवान इस शक्ति पर जब आता है तो पुराने धर्मों का विनाश करता है, सब धर्मों का जो पुराने पड़ गए हैं तामसी हो गए हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदायी होती है और बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान दुखदायी हो जाती है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे कोई जड़ वस्तु, हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदायी और बाद में तमो हो जाती है, चार अवस्थाओं से गुजरती जरूर है। जैसे मनुष्य का जीवन बालिका, किशोरावस्था, नौजवान और फिर बुढ़ापा, सुख भोगने की भी क्षमता नहीं रहती। तो ये सृष्टि भी चार आयामों से पसार होती है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, चार सीन का ये ड्रामा है। उसमें दो पहले सीन सुख के, सुखरूपी दिन है, ज्ञान चूरी की रची हुई दुनिया है, और बाद के दो युग द्वापर से लेकर कलयुग तक, ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया है। इस अज्ञान अंधेरे की दुनिया की रचना मनुष्य गुरुओं ने की है। इब्राहिम के फॉलोअर्स सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अरब है, अरब की तादाद से भी ऊपर है। क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स भी 100-150 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर आधिपत्य जमाने वाले ये देहधारी धर्म गुरु, मनुष्य गुरु, इन्होंने आकर के संसार में अज्ञान फैलाया और दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब गई। अभी माया का पॉम्पेड शो 100-200 वर्ष के अंदर इतना ज्यादा फैलता है, पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से लेकर के भारत तक, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं। क्या क्या निकला है, जो भी निकला है वो जन सामान्य के कल्याण नहीं उससे हो रहा है। एटम बम निकले, क्या उससे जनता का कल्याण हो रहा है? एरोप्लेन निकले हैं, कितनी दुनिया की परसेंटेज आत्माएं एरोप्लेन से लाभ ले पाती है? ना के बराबर। और भी वैज्ञानिक चमत्कार हो रहे हैं। बेबी ट्यूब्स बनाए जाते हैं, उनसे बच्चा पैदा किए जाते हैं। लेकिन क्या उसमें जो आत्मा आती है वो आत्मा का परिसर होता है? नहीं होता। बीज को जब तक नहीं सुधारा है तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया है मनुष्य ने, आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व भी, एलिमेंट्स भी अविनाशी है, लेकिन प्रकृति मनुष्य के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत कुछ, लेकिन इतनी कंट्रोल में नहीं आई है जो उसको सात्विक बना करके सतो प्रधान प्रकृति बनाए सके। ये ईश्वर का ही काम है, वो ही प्रकृतिपति कहा जाता है। वो मायापति भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो आत्मा में کمزوریاں آ جاتی ہے ان کے اوپر بھی کنٹرول کرنے والا ہے اور منشیا آتماؤں کو بھی کنٹرول کرانے والا ہے. یہ پانچ اداروں کا کنٹرولر مایاپتی کہا جاتا ہے. مایا کا پنجہ ہے یہ پانچ ودار, تو مایاپتی بھی ہے پرتی پتی بھی ہے. پانچ تتو کام کو پرتھوی جل وایو اگنی آکاش یہ ایلیمنٹ جنہیں منشیا نے بہت کچھ کنٹرول کر لیا ہے. منشیا کا شریر بھی انہیں پانچ تتوں سے بنا ہوا ہے, پوری کاٹ کاٹ کر لیتا ہے. لیکن منشیا شریر میں سے آتما جو نکل جاتی ہے اس کی پکڑ منشیا کے ہاتھ میں نہیں آئی. وہ مایا پتی اور پرکتی پتی ہے اور لکشمی پتی بھی کہا جاتا ہے. لکشمی نارائن کا راج ستیگ میں ہوتا ہے. درتی کلا والے یوگوں میں تریتا میں دواپر میں کلیگ میں نہیں ہوتا ہے. تو وہ سمپورن دنیا بنانے والا ہے. کلیوی جھوٹ دنیا کو پلٹ کر کے ستیوی سولہ کلا سمپورن دنیا بنانے والا ہے. وہ آتا ہے تو بتاتا ہے کہ رام کون ہے اور راون کون ہے. بیسک نالج لینے والی برہما کماریاں یہ بات نہیں بتا سکتی. وہ تو رام کو ہی چھپائی دیتی ہے. کرشن کی سول کو اجاگر کرتی ہے اور رام کا ڈبا بول کر دیا. کہتی ہے کہ کرشن دادا ایک راج وہی گیتا کا بھگوان ہے ساکار روپ میں. اس کے علاوہ اور کوئی منشیا ماتر نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہے, گیتا کا بھگوان نراکار شیو ہے. ارے گیتا کوئی کتاب کا نام ہوتا ہے کیا؟ گیتا ماتا کہی جاتی ہے, بھارت ماتا کہی جاتی ہے, جس کی وندنا کرتے ہیں, پوجنیے مانی جاتی ہے. تو کوئی جڑ زمین کا نا بھارت ہے. سرو شاستر شیرومنی کہی جاتی ہے. شاستر مانا شاسن کرنے والی. وسودھیو کٹمبکم کے حساب سے ساری وسودھا ہمارا کٹمب ہے, خاص بھارت واسیوں کے لیے, ودیشیوں کے لیے نہیں. اگر ان کے لیے ساری دنیا کٹمب کے روپ میں ہوتی تو وہ اپنے دیشوں سے ودیشیوں کو یا بھارت واسیوں کو بھگاتے نہیں رہتے. بھارت کی آج بھی پرمپرا ہے, جو بھی ودیشی بھارت میں آئے بھارت نے اپنی گود میں ان ودیشیوں کو جگہ دی. مسلمان آئے آکرمن بھی کیے, تحریک کیا, لوٹ لپوٹ کی, مار کاٹ مچائی, پھر بھی ان کو جگہ دی. کرسچینز آئے سارے بھارت کو اپنی مٹھی میں لے لیا, انگلی پہ نچانا شروع کر دیا, راجائی کی ویوستھا تحت رہ کر دی, آپس میں لڑائی کیا. وہ کرسچینز بھی بھارت کے ہر شہر شہر گاؤں گاؤں میں بسے ہوئے, بھلے ان کا راج نہیں, تو چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بھارت ماتا کی گود میں سبھی نے پالا لی. تو پالنا دینے والی کوئی چیتنیہ شکتی بھی ہوگی نا جس کی وندنا کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے. وہ شکتی کون ہے؟ ایسا تو نہیں ہے اس آتما کو دھول دھول سرت کر دیا گیا ہو. وہ راون کی جیل میں آ چکی ہو. رامائن میں لکھا ہے ماتاؤں کا ادھار کرنے کے لیے آتا ہوں. دھرنی ماتا جب بہت دکھی ہو جاتی ہے تو اس کا ادھار کرنے کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے، خاص ماتاؤں کے لیے. حساب لگایا جائے، دیکھا جائے تو دنیا میں جاتی بندھن پرشوں کو ہے، ماتاؤں کو ہے، کنیاؤں کو ہے یا کماروں کو ہے؟ آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ ماتا ہے اس لیے. آپ لوگ بتائیے آج کی دنیا میں ماتائیں بھی ہیں، کمار بھی ہیں، ادھر کمار بھی ہیں، شادی کیے ہوئے اور کنیا بھی ہیں. سب سے جاتی سوتنتر کون ہے اور سب سے جاتی پرتنتر کون ہے؟ ہر دیش کی گورنمنٹ بھی سمانتا میں لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں ہو پا رہا. تو بتائیے کنیاؤں، ماتاؤں، پرشوں، کماروں کے بیچ میں سب سے جاتی پرتنت کون ہے؟ آپ کو جان میں چل رہے اس سے پھٹ سے بتا رہے ہیں. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بھرتی بھی نہیں کیے. بیٹھے ہیں نا؟ ہاں بیٹھے ہیں. تو گیان یوگ کی بھرتی میں پکنے کے بعد پوری بات پتہ چل جائے گی. تو جو نئے نئے جیسے بیٹھے ہوئے وہ بتائے کہ دنیا میں جاتی دکھی کون ہے. کنیا ماتائیں، کمار، ہندی انواد کر دو شاید نہیں جانتا. وہ سب جانتے ہیں گھر گھر کی استھتی ایسی ہے. یہ بات ایسے کہتے ہیں بھارت میں آدمی نہیں ہے آدھے کی حقدار آدھے کی حقدار ہے. لیکن پریکٹیکل میں اگر دیکھا جائے تو بینک بیلنس جاتی پرشوں کے نام ہوتا ہے یا ماتاؤں کنیاؤں کے نام ہوتا ہے؟ کس کے نام ہوتا ہے؟ پرشوں کے نام ہوتا ہے. اس کا مطلب دھن کے اوپر، دھن کے اوپر اور من کے اوپر بھی آدھپتی پرشوں کا جمایا ہوا ہے. تو ماتائیں کنٹرول ہوئی پڑی بندھن میں ہے. یہ اس بھارت کی بات ہے جہاں شاستروں میں یہ گائن ہے یتر ناریت پوجن سے رمنتے تتر دیوتا، جہاں ناریوں کی پوجا ہوتی ہے سمان سے جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں دیوتائیں نواس کرتے ہیں، جہاں ناریوں کا اپمان ہوتا ہے وہاں راکشس نواس کرتے ہیں. تو بھگوان آتے ہیں ماتاؤں کا ادھار کرنے کے لیے. ان کو کہا جاتا ہے دھرنی ماتا، शास्त्र में जो नाम है वो काम के आधार पर है। धरणी माने धारणा करने वाली, जैसे प्योरिटी की धारणा है, प्योरिटी माने पवित्रता, ब्रह्मचर्य। पुरुषों में जाति प्योरिटी निभाने का ताकत होती है या कन्या माताओं में प्योरिटी निभाने की ज्यादा ताकत होती है, खास भारत में विदेश में बात करते हैं। अगर यहाँ माताएं ज्यादा बैठी हुई है तो हाँ ज्यादा बैठी हुई है, इससे साबित होता है कि भाइयों ने उनको स्वतंत्र किया हुआ है नैनू से। दूसरी जगह के मुकाबले फिर भी स्थिति अच्छी है। बात कर रही थी कि माताएं जब शक्ति में बंधन में आ जाती है तो भगवान को आना पड़ता है, चाहे वो सीता माता हो और चाहे वो मंदोदरी हो। मंद उदरी बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद बुद्धि है। अंदर से राम को सपोर्ट करती है, क्या अंदर से चाहती है कि राम का राज्य हो, लंका में भी राम का राज्य हो, राम सत्य है। लेकिन रावण का अपोजिशन नहीं कर पाती, छोड़ नहीं पाती। और सीता मंदोदरी के मुकाबले उतनी बंधन में नहीं होती, नहीं बंधन में होती है। मंदोदरी कम बंधन में और सीता जाति बंधन में होती। नाम क्या दिया? सीता। सीता माना शीतल, जो भाव स्वभाव से शीतल है। धारणा शक्ति वाली है, पवित्रता की धारणा वाली है। ऐसी पवित्रता की धारणा जो सब गुणों की जननी है, प्योरिटी। जहां पवित्रता होगी वहां बुद्धि भी पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि होगी मैंने सुमति होगी, इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो पवित्रता की धारणा कन्या माताओं में जाति होने के कारण भगवान जब इस शक्ति पर आते हैं तो कन्या माताओं के हाथ में कलश देते हैं ज्ञान का। अपने यहां कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश भर करके रखेंगे नवग्रह के पास, नवग्रह पूजन के लिए। वो कलश कोई पानी का कलश नहीं है, ज्ञान जल का कलश। तो ज्ञान जल का कलश शास्त्रों में गाया हुआ है कि सागर मंथन हुआ, माना ज्ञान सागर भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हुआ। असुरों ने भी मंथन किया और देवताओं ने भी मंथन किया। उस मंथन में से सबसे श्रेष्ठ चीज क्या निकली?
अमृत,
अमृत कलश, ज्ञान अमृत का कलश निकला। और सबसे गंदी चीज क्या निकली? हालाहाल विषय, विष माना विषय विकार, क्या विषय विकार। तो कलश किसको दिया गया है? देवताओं को दिया गया। उनको तो ज्ञानामृत बांटा गया, लेकिन किसके हाथ में दिया गया बांटने के लिए? माता के हाथ, लक्ष्मी के हाथ, ग्रह लक्ष्मी जिसके थे। घर घर में भी तो ग्रह लक्ष्मी होती है ना। घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की लक्ष्मी अगर कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाए। तो लक्ष्मी के हाथ में कलश ज्ञान का दिया जाता है। कौन सा कलश? जो मंथन करने के बाद निकलता है वो कलश नहीं, जो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित तो बताती है कि ज्ञान कलश भगवान ने हमको दिया। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में स्थापन हो गए, गांव गांव शहर शहर में स्थापन हुए। दुनिया वालों को मानना पड़ेगा कि हाँ ब्रह्मा का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल रही है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जो वाणी निकल रही है उस वाणी को ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। अमृत क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो भी वाणी निकली है माउंट आबू से ब्रह्मा के मुख द्वारा, उसका मंथन नहीं हुआ जब तक ब्रह्मा जीवित रहे। और मनन चिंतन मंथन जब तक नहीं होता है ज्ञान सागर की वाणी का, तब तक वो ज्ञान अमृत नहीं है। ज्ञान का अमृत कलश नहीं कहा जा सकता। तो वो तो झूठी बात कहते हैं कि हमको ज्ञान अमृत कलश मिला हुआ है, हम लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले नहीं। अमृत कलश की रचना ही नहीं हुई थी जब तक वो जीवित रहे। अमृत कलश का कनेक्शन सागर मंथन से, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके द्वारा जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से उच्चारण की गई, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया में आने लगी। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दो हिस्से हो गए, चाहे उनको कौरव पांडव कह दो और चाहे उनको देव और असुर कह दो। क्योंकि शास्त्रों में जो भी देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है, रामायण की कथा प्रसिद्ध है, महावाणी महाभारत ग्रह युद्ध प्रसिद्ध है, वो सब इस समय की बात है। इस समय की, जबकि एटम बम बन जाते हैं शंकर जी का काम तैयार हो जाता है। हर हर बम बम, वो कार्य तैयार हुआ पड़ा है। वो कोई खिलौने नहीं तैयार हुए हैं कि हमारे घर की सजावट की जाएगी। जो चीज बनी है वो काम में लाई गई। और धर्म पिताएं तो विनाश करते ही नहीं, पुरानेपन का, पुरानी जनरेशन का, पुराने धर्मों का। ये तो भगवान है, जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश का भी मसाला तैयार करा लेता है। तो एक तरफ अमृत कलश निकलता है, जो कन्या माताओं को सुपुर्द किया जाता है, कि तुम ज्ञान जल बांटो। बांटा जाता है तो भी असुर चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? है? नंबर लगाया गया देवताओं का पहले कि देवताओं को पहले बांटा जाना चाहिए, वो पहले अधिकारी है, उनमें पिवंती की पावर होती है, वो धारण कर सकेंगे। लेकिन आसुर क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं, चुपके से नियम भंग करके देवताओं की लाइन में घुस करके बैठ जाते हैं। एक तरफ विषय विकार भी पीते रहते और दूसरी तरफ ज्ञान अमृत भी पीते रहते, तो वो ज्ञान उनके काम आएगा? काम नहीं आता, लेकिन पी तो लिया ना तो अमर हो जाते। अमर हो जाते हैं माना उनकी आत्मा में वो संस्कार खत्म नहीं होते। आखिरी पड़ेगी लेकिन मर्ज हो जाते। जैसे कोई बीज होता है, सर्दी में पौधा बनेगा, गर्मी में पौधा नहीं बनेगा। कोई बीज होता है, गर्मी में पौधा बनता है, सर्दी में पौधा नहीं बनता है। कोई बीज होता है, बरसात में उगता है, दूसरे मौसम में नहीं उगता। तो ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्मा रूपी बीज है जो प्रकृति के मध्य में यादगार के रूप में बिंदी या टीका लगाया जाता है। ये आत्मा यहाँ निवास है, इस आत्मा की रोशनी आंखों में से निकल रही है। ये आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो आंखें बटन हो जाती है, माने वो रोशनी आत्मा रूपी रोशनी निकल गई। वो चैतन्यता चली गई। तो आत्मा में जो आखिरीपने के संस्कार भरे हुए हैं जन्मजात जिन आत्माओं में, वो आत्माएं भी ज्ञान अमृत को पी करके अमर बन जाती। उनको राव के इतना दे दिए, कहते हैं नौ ग्रहों की दशा बैठती है तो कोई के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है। अच्छी दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। तो अभी वर्तमान में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं आठवीं संस्कार वाली जो भगवान ज्ञान अमृत बांट रहा है, बंटवाए रहा है, उसमें चुपके से ज्ञान भी लेती जा रही है और विषय विकार भी पीती जा रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो उनको पता नहीं। अभी बाप पहचान आकर के दे रहे हैं कि ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माने आत्मा, पुर माना पूरी, स माना सेते सोने वाली, शरीर रूपी पूरी में सोने वाली है आत्मा माने पुरुष। वो पुरुष रूप आत्मा जो है वो इस समय दुनिया में दो रूपों में है, एक आखिरी रूप में और दूसरी देवात्माओं के रूप में है। तो वो देवात्मा है लेकिन असुरों के संग में आकर के सब असुर बन चुके। रामकृष्ण की आत्माएं भी जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता में जन्म लेते द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिर चुकी, गलती से उनको भगवान मान लिया। वो देवताएं थी, देवताओं में उच्च कोटि की आत्माएं थी, मनुष्य जब नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है और मनुष्य जब ऊंचा होता है देव गुण धारण करके तो देवता बन जाता है। गीता ज्ञान में ये बात बताई जाती है कि गीता ज्ञान नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया था। अर्जुन नर था, मनुष्य था, मनुष्य को नारायण बनाने का ज्ञान दिया। नारी द्रौपदी थी, उसको नारायण बनाने का ज्ञान दिया गया। भगवान ने ज्ञान दिया लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया। अब गीता में तो कई श्लोक और कई शब्द ऐसे आए हैं जो गीता ज्ञानदाता निराकार समझा जा रहा है, समझ में आता है कि वो निराकार था, वो कोई साकार नहीं था। साकार माने देह अभिमानी, निराकार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो रूप तो बनाए दिए है, समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था, माने शरीर रूपी रथ था। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई। अभी वो कमाई कराए रहा है, कौन सी कमाई? जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है, उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है। ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। कुरान उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं, बाइबल में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है। अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा?
सुनाएगा,
क्या करेगा? धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी थी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था या डायरेक्ट मुख से बोला था? क्या दिया था? डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या करता? तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, रथ में, मनुष्य शरीर रूपी रथ, उसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े का काम करती है। इन्हें को इन इंद्रियों को खुली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा। इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा। सरकार भी जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो भी अंत में मान लेगी कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली है। तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है निराकार शिव, वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता। क्या وہ ایک ہی آتما ایسی ہے جو گرم سے جنم نہیں لیتی. کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ وہ کرموں کی بری گتی کو جاننے والی. جو خود ہی 100% کرموں کی بری گتی کو جاننے والا ہوگا وہ کرم بندھن میں آئے گا کیا؟ جو دوسروں کو کرم بندھن سے چھڑانے والا ہے, راج یوگ سکھانے والا ہے, بتاتا ہے تم بچے کرم یوگی بنو, ہٹ یوگی نہ بنو. ہاتھ پاؤں بیٹھ کر کے باندھ کر کے بیٹھ گئے اور بھگوان کو یاد کرنے لگ پڑے, یہ آرٹیفیشیل یاد ہے. کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے نہیں یاد کرتا ہے. کارخانے میں کام کرے گا تو بھی یاد آئے گی. کوئی ماں اپنے بچے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے یاد نہیں کرتی, روٹی پکاتے بھی بچے کی یاد آتی ہے, وہ اصلی یاد ہے. یاد کو منشیوں نے, بھگوان کی یاد کو منشیوں نے آرٹیفیشیل بنائی دیا. ڈول مجیرہ بجائے بجائے کی یاد کرتے ہیں, گیت لگا کے یاد کرتے ہیں. یہ سب ہے ہڈیوں زبردستی. کیوں زبردستی؟ اس لیے ہے کہ بھگوان کی اصلی پہچان نہیں ہے کسی کو. رامائن میں لکھا ہے جے جانو تے دیو جنائی اور جانا تو تمہیں ہو جائی. جس کو بھگوان آ کر کے جان دیتا ہے وہی جان سکتا ہے بھگوان کی پہچان. بھگوان کے علاوہ بھگوان کی پہچان کوئی 100% نہیں دے سکتا. دوسرے جتنی بھی پہچان دیں گے وہ ادھوری پہچان دیں گے. بھگوان کے سنگ کو پہنچ کر کے سانتی میں آ کر کے جو جتنی گہرائی سے بھگوان کو پہچانے گا وہ دوسرا نہیں پتا جاتا. ویسے بھی کہتے ہیں کسی منشی کی کرنی کو جاننا ہو, چلن کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ رہنے سے ہی پہچانا جا سکتا ہے. کوئی منشی ہے کسی منشی کی گہرائی کو جاننا چاہے تو دور رہ کر کے اس کی گہرائی کیا ہے نہیں جانی جا سکتی, پاس میں رہ کر کے ہی جانا جا سکتا. تو بھگوان بھی اس شکتی پر آ کر کے کسی منشی رتھ میں پرویش کر کے منشی روپ میں کاریہ کرتا ہے. اور منشیوں کی بنائی ہوئی گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے سادھارن تن میں آئے ہوئے بھگوان کو مورمتی لوگ نہیں پہچان پاتے. وہ اپنے اہنکار میں رہتے, بدھی کا اہنکار بہت بڑا اہنکار ہوتا ہے. تن سندر ہو اتنا بڑا اہنکار نہیں کرے گا, دھن عرب خراب ہو اتنا بڑا اہنکار نہیں کرے گا. لیکن کوئی کے پاس بدھی ہے اور بدھی کے آدھار پر 10-20-50 کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے تو اس کو بہت اہنکار کرتا ہے. یہ بدھی کا پریورتن کرنے کے لیے پرماتما کو آنا پڑتا ہے. بدھی مانے آتما, من بدھی کو ہی آتما کہا جاتا ہے. آتما کوئی دوسری چیز نہیں ہے. شریر مردہ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ من بدھی اس میں رہ گئی, نہیں, من بدھی روپی آتما ہی اڑ گئی. جس آتما میں انیک جنموں کے سنسکار بھرے ہوئے ہیں بدھی میں, وہ آتما شریر سے الگ ہو جاتا ہے. شریر میں آتما نکل جانے کے بعد سارے تتو موجود ہیں, ناک کان کان ہاتھ پاؤں پانچ تتو. کیا نکل گیا؟ وہ من بدھی کی پاور نکل گئی, وہ روشنی نکل گئی, وہ چیتنیتا نکل گئی. تو وہ چیتنی آتما جو بیج ہے, یہ شریر وکش ہے, وہ بیج مول روپ میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اپنا پارٹ بجاتا ہے. کوئی آتما راکشسی سوبھاؤ کی ہے, بھگوان بھی بھلے آ جائے, برہما بھی نیچے اتر آئے تو بھی نہیں تبدیل ہوتی. کوئی آتما ایسی ہے جو بھگوان کے آنے پر راکشسی سوبھاؤ تیاگ کر کے, جو ان کو سنگ کے رنگ سے ملا ہے ودرمیوں کے سنگ کے رنگ سے, اس کو تیاگ دیتی ہے اور دیو پد پراپت کر جاتی. تو بھگوان آ کر کے ابھی پہچان دے رہا ہے رام کون ہے اور راون کون ہے. رام راون بن جاتا ہے, کرشن کنس بن جاتا ہے. کب کب؟ کلیوگ کے انت میں سنگ کے رنگ میں آتے آتے جو آخری دھرم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, مانویہ دھرم دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان ودرمیوں کے چکر میں آ کر, ودیشیوں کے چکر میں آ کر کے رام تتو کی آتمائیں بھی نیچے گر جاتی ہیں. ایک شیو سپریم سول ایسا ہے جس کو کسی کے سنگ کا رنگ نہیں لگتا. اس کی یادگار ہمارے مندروں میں دکھائی گئی, بھارت ورش میں اور ودیشوں میں سب سے جاتی مندر کس کے بنے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا دیوتا ہے جس کے سب سے جاتی مندر بنے, جس کی سب سے جاتی مورتیاں بنی, لنگ مورتیاں بھی بنی ہیں, وگرہ بھی بنا ہے, اس کو کہتے ہیں شیو شنکر بھولے ناتھ. وہ یادگار اس بات کو بتائی رہی ہے کہ وہ ماں کا سوروپ بھی ہے اس کے ساتھ, جو جلاڈھاری بنی ہوئی ہے وہ ماں کا سوروپ دکھایا گیا ہے, استری کا انگ دکھایا گیا ہے اور لنگ رکھا ہوا ہے پروش روپ دکھایا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دونوں دکھائے گئے. کیونکہ بھگوان آ کر کے پروتی مارگ کی استھاپنا کرتا ہے, سنیاسیوں کی طرح استری پروشوں کو الگ کرنا نہیں سکھاتا, وہ سکھاتا ہے اندریوں کو کنٹرول کرنا. سنیاسی تو کائر ہے, گھر بار چھوڑ کر کے اس لیے جاتے ہیں کہ ساتھ میں رہ کر کے پوتر نہیں رہ سکتے. بھگوان آ کر کے سنیاسیوں کو نہیں سکھاتے. وہ بھکتی بھی کرنا نہیں سکھاتے, بھکتی میں تو اندھشردھا ہوتی ہے, وہ منشی گرو سکھاتے. بھگوان آ کر کے گیان دیتا ہے, اور شاستروں میں لکھا ہوا ہے میری تے گیانانند مکتی, بنا جان کے مکتی نہیں ہوتی. بھگوان آ کر کے وہ گیان دیتا ہے, گیان مانا جانکاری. اسے بنتا ہے گیانی. بھارتی گورنمنٹ میں آ کر کے اس کا نام بڑا ڈال دیا جانتا پارٹی. وہ تو صرف نام بتائے دیا ہے. اگر جانتا پارٹی ہے بول سکتی ہے تو یہ بتائے کہ یہ کپڑے کا جھنڈا کبھی وشو وجے کرتا ہے؟ وشو وجے کر کے دکھلا دے تب ہو پربھو ہمارا جھنڈا اونچا رہے, ہمارا کاغذ کا کپڑا جھنڈا وجے کرتا ہے وشو کو. وشو وجے منشی کرے گا یا کپڑا کرے گا؟ کوئی تین کپڑے ہوئے ہیں شریر روپی وستر, برہما کی یادگار ہرا کپڑا, وشنو کی ساکشتا کا یادگار سفید کپڑا, یہ شریر روپی وستر ہے, اور شنکر کی کرانتی کا سوچک لال کپڑا. من بدھی کے اندر سنکلپوں کا خون بہائے دیتا ہے, یہ سوکشم کرانتی ہے گیان کی, اور سوکشم سے لے کر کے ساری دنیا میں استھول کرانتی بھی ہوگی, استھول خون بھی بہے گا. کن کا بہے گا؟ جو پرماتما کا گیان संदेश लेकर के परिवर्तन नहीं होगी, उनका खेल खराबा होना, खून खराबा होना। जो भगवान के बच्चे बनेंगे, ब्रह्मा के मुख से भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, मुखवंशावली ब्राह्मण बनाता है, जो ब्राह्मण बनेंगे पवित्र, विनाश के पीरियड में, एटम बमों के फटाके के पीरियड में, वो भगवान से पार लगेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कुरान में कयामत का बहुत जिक्र है, मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि विनाश के पीरियड में खुदा के बंदे बहुत आराम से रहेंगे, और जो खुदा की वंदना नहीं करने वाले होंगे, माथा टिकाने वाले नहीं होंगे, माने माथा नहीं झुकाएंगे, अपने अहंकार में रहेंगे, उनको बहुत दुख झेलने, और दुख झेलते झेलते खून खराबा होते होते आखिर बस में भूत हो जाते। जो आने वाली नई दुनिया है, जो आने वाला सत्ययुग है, उस सत्ययुग में उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी आत्मा को सत्य नहीं बनाया। जो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, भगवान का संग नहीं किया, भगवान का संग करेंगे तो आत्मा में सत्य चित्त आनंदमयता के रूप आएंगे, गुण आएंगे। असुरों का संग करेंगे, जो आज दुनिया करती चली आ रही, खास करके भारत के पढ़े लिखे नौजवान कन्याएं और कुमार विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं, विदेशी पढ़ाई से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। अरे भगवान को सदगुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है, और सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल गुरु, एक ओंकार निरंकार, एक ही सदगुरु है, बाकी सब है गुरु। तो जब एक ही सत्य मन सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए?
झूठे,
झूठे गुरु। सारे गुरु गुसाए जो है शक्ति को नीचे ले गए, भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते लेकिन दूसरों को ज्ञान बढ़ाते रहते, सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया, सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिस डाल पर बैठे हुए उसी डाल को काट दिया। एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं?
ऊंचा,
बहुत ऊंचा समझते हैं, ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए, और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश। हर हर पापों का हरण करता है, बम बम। जब बमों के फटाके होते तब दुनिया झुकती है, फिर पछताए होता जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बुद्धि के अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना? इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा, तूने जागली पढ़ाई पढ़ी होगी, ये जागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है, ये डॉग एंड विचिस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई, असली पढ़ाई तो दैवत्व वाली पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, नर को नारायण बनाने वाली पढ़ाई वो आकर के राजयोग सिखाता है। उस राजयोग में राग भरा हुआ है कि कैसे स्त्री का संग करते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता। आचार्य रजनीश कहते कहते मर गए, योग त्यागी गए तो क्या बताते थे, भोग में योग समाधि लगा दे। अरे तुम मर क्यों गए, भोगी बना के अपने चेलों चपाटों को चले गए। अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्ध योग सिखाने आया। मिसाल के तौर पर मिसाल भी बताई दिया, जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है, कौन उसकी आंख के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी। तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है, जैसे आंख का मिसाल लिया कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया, उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया। ऐसे कान नाक मुख और जो भी भ्रष्टेंद्रियां हैं उनका भी यही हिसाब है। इस संघ में आते हुए भी निसंग कैसे रहा जा सकता है, उसका मिसाल, संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया। शंकर जी का भोजन क्या था, पेय क्या था, क्या पीते थे है? अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है, कौन सा पात्र दिखाया जाता है, विष पात्र। जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले, उन विषय विकारों को वो पी गए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए, वो विषय विकार उन्होंने पी लिए, उनको असर नहीं हुआ। नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है। उनका विषय विकार कहां तक है, कैसे गले में, गले से आवाज निकलती है ना, तो उन्होंने जो आवाज निकाली वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खराब कर सकती है। नहीं तो ये नियम है, जो व्यक्ति जितना जाति विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता। दैन है, शेरनी का दूध
सोने के
पात्र में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है। ये शरीर है मिट्टी का पात्र, अगर विकारी है तो मन बुद्धि में विकारी मन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है मन मिट्टी का पात्र है।